ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हम सबके बीच में हैं, हम करतल ध्वनि से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने 1980 में MBBS की डिग्री प्राप्त की, 1989 में MD किया। आपको भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। साइंटिफिक रिसर्च इन योगा के लिए डॉक्टर सुशीला ठक्कर नेशनल अवार्ड भी आपको प्राप्त हुआ और ग्लोबल हॉस्पिटल में आप अभी सेवाएं दे रहे हैं अपनी। विशेष रूप से हमारे इस विश्वविद्यालय के अंदर योग से किस प्रकार से हम हृदय रोग से भी मुक्त हो सकते हैं, मेडिटेशन एक मेडिसिन के रूप में कार्य करती है, ये सभी डॉक्टर्स मानते हैं। तो हमारा योग से किस प्रकार से कई पेशेंट्स के ब्लॉकेज भी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी की क्लासेस के द्वारा, उन्होंने जो योग की विधि बताई उसके द्वारा उनके ब्लॉकेज भी समाप्त हुए हैं। ऐसी विशेष विद्वान भाई आज हमारे बीच में हैं, हम उनसे अभी क्लास करेंगे। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, बैच और गुलदस्ते के द्वारा डॉक्टर गुप्ता जी का बहने स्वागत कर रही हैं। आप दिल के मरीजों को एक बहुत सुंदर विधि बताते हैं दिल की बीमारी से मुक्त होने की। दिल की बीमारी जो एक आज के जमाने में आम बीमारी हो चुकी है, उस दिल को हम कैसे उस दिलाराम से जोड़ करके दिल को आराम दे सकते हैं, और सबकी दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले गुप्ता जी से हम अभी क्लास करेंगे।
आप सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं? आप में से कोई ऐसा है जो बीमार रहना चाहता है? सभी खुश भी रहना चाहते हैं? आप में से कोई ऐसा है जो दुखी रहना चाहता है? कोई भी नहीं। किंतु आज अगर हम देखें, समाज में देखें, किसी भी शहर में, अगर हम दुनिया किसी भी शहर में अगर हम लोगों को चेकअप करके देखें, तो ये देखने में आया कि लगभग, जैसे सपोज हम एक सिटी दिल्ली जैसे शहर में, या अहमदाबाद जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में अगर हम 100 लोगों का सर्वे करें, तो देखने में आया 100 लोगों में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, 100 में से 40% लोग मोटे हैं, ओबीज हैं। आप में से भी काफी होंगे मोटे? नहीं, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई ना, मोटापा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। 15% लोगों को हार्ट की बीमारी है, 25% लोगों को एसिडिटी, हाइपर जो होता है ना, एसिड रिफ्लक्स होता है जिसको GERD कहते हैं इंग्लिश में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। 20% लोगों को हड्डियों की बीमारियां हैं, 10% लोगों को स्किन की बीमारियां हैं, 10% लोगों को सांस की बीमारियां हैं, दमे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, 10% लोगों को डायबिटीज है, शुगर की बीमारी। अगर हम ऐसे देखें कुछ मुख्य बीमारी, 15-20 बीमारी, ज्यादा नहीं, 5% लोगों को कैंसर हैं, 5% लोगों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, बहनों को बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा देखने में आता है कि 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। कितनी है? 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, हर एक को दो दो मिली है एवरेज में, नहीं मिली। आप भी अगर अपने आप को देखेंगे ना, आपको भी दो तो मिल जाएंगे अपने अंदर। अपने अंदर देखो जरा, है दो दो बीमारी सबके अंदर? नहीं है। एवरेज दो बीमारी आपके अंदर है सबके अंदर ना, ये बॉडी की बीमारी की बात कर रहा हूं। और तन की बीमारी, मन की बीमारी, सबको 6 बीमारी तो सबको फ्री में मिली हुई है। नहीं ऐसा है? कौन कौन सी मन की बीमारियां हैं? डिप्रेशन तो सभी जानते हैं ना, डिप्रेशन मतलब आज लोग एवरेज 20% लोग डिप्रेशन में हैं किसी भी शहर में, 10% उसमें से ऐसे हैं जो दवाई खाते हैं, दवाई खा के भी उनका डिप्रेशन ठीक नहीं होता है, 10% लोग नींद नहीं आती उनको ना, वो स्लीपिंग टैबलेट्स लेते हैं ना सोने के टाइम, और चिंता सभी को है। सबसे बड़ी बीमारी कौन सी होती है? चिंता सभी को है। आप में से कितने लोग गुस्सा कभी, जिन्होंने गुस्सा कभी नहीं किया हाथ उठाएं, जो आज तक जिन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया हाथ उठाइए, जिन्होंने आज तक कभी गुस्सा नहीं किया, कभी नहीं किया आपने, इतना सा हाथ उठाया मतलब थोड़ा सा करते हैं थोड़ा सा नहीं करते ऐसे। तो चिंता गुस्सा प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर में रहना, उदासी की मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई है ना, दूसरों में दोष निकालना, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी, सिनिसिज्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिनिसिज्म, सिनिकल बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर, मन में बदले की भावना रखना, ये आज लगभग सभी में है। जेलसी सबके अंदर है, ईर्ष्या सभी करते हैं एक दूसरे से। तो ये 5-6 बीमारियां तो मन की सबको मिली हैं। तो आज देखें जितने जितने हमारी मेडिकल प्रोफेशन आगे बढ़ा, मेडिसिन आगे बढ़ी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन गए, बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, बीमारियां कम हुई, ज्यादा हो गई? क्यों ज्यादा हो गई? आप क्या समझते हैं बीमारी ज्यादा क्यों हो गई? नेगेटिविटीज है जी, मेटेरियलिस्टिक हो गए, उसका इलाज नहीं है, मेटेरियलिस्टिक का इलाज नहीं जी। देखिए जो आज की मॉडर्न हेल्थ केयर है वो सिर्फ बॉडी का इलाज करती है, चाहे हम ऑपरेशन करते हैं, चाहे हम दवाइयों से ठीक करते हैं, चाहे हम फिजियोथेरेपी करते हैं, वो सिर्फ बॉडी के ऊपर करते हैं ना। जितनी भी मेडिसिन बनी है आज तक वो किस पे काम करती है, जितनी भी रिसर्च हो रही है वो किस पे हो रही है? सिर्फ बॉडी पर। कि तो इंसान सिर्फ बॉडी है क्या? है सिर्फ बॉडी? बॉडी कभी कहते हैं इंसान को? हॉस्पिटल में एक सीरियस पेशेंट आता है ना, उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, मैं तो हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट्स लास्ट मोमेंट पे आते हैं, जब जब हार्ट अटैक आ चुका होता है, एडवांस स्टेज में होता है, सांस जब ऊपर नीचे हो जाती है, और वैसे ही पता है आपके हार्ट पेशेंट को ज्यादा टाइम नहीं होता है, विद इन ए पीरियड लेके आते तो बच जाते हैं, नहीं तो लेट हो जाए तो नहीं बच पाते हैं। तो पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स अगर हम उसको बचा नहीं पाते तो क्या होता है? डॉक्टर पेशेंट के रिलेटिव्स बाहर वेट कर रहे होते हैं, उनको क्या बताता है आकर के, बाहर आके क्या कहता है? आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट बट ही हैज गॉन और शी हैज गॉन। नहीं, जो थे वो चले गए हैं, जो आपके थे वो चले गए, क्या लेके जाओ? बॉडी लेके जाओ, ऐसे बोलते ना। तो हम सिर्फ बॉडी का इलाज करते हैं, और आज ये हम जानते हैं, आज की जो रिसर्चेज दुनिया में हुई ये जानते हैं कि 95% से अधिक बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। साइकोसोमेटिक माना, साइकी मींस माइंड एंड सोमा मींस बॉडी, अर्थात उनका ओरिजिन पहले मन में होता है फिर तन में होता है। पहले मन में बीमारी आती है फिर शरीर में आती है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो हार्ट की बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे मोटापा है, चाहे एसिडिटी है, हड्डियां खराब होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर जैसे बताया हमने आपको, पेट की खराबियां होती हैं, ये इवन जुखाम भी होता है, बार बार आपको कोल्ड होता है, इसका कारण भी आपको मन की प्रॉब्लम्स है। आपके बीमारी पहले मन में आती है उसके बाद शरीर में आती है। जो वर्ड है ना इंग्लिश में वर्ड है डिजीज, है ना, रियल वर्ड क्या है वो? डिसईज, लॉस ऑफ ईज। पहले डिसईज मन में आती है, उसके बाद बॉडी में आती है। और जो बीमारी शब्द है, जो हिंदी में हम कहते ना बीमारी शब्द, वो कहां से आया आप जानते हैं क्या? बीमारी शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ है, आप में से कोई भी बता सकता है? बीमारी शब्द का ओरिजिन बी माना डर या भय, और मारी माना बने रहना। तो बीमारी शब्द का अर्थ ही क्या है? भय बने रहना, डर बने रहना। अगर आपके अंदर फियर है, इनसिक्योरिटी है, तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी जो है 80,000 बिलियन सेल्स की बनी हुई है। जैसे एक मकान ईंटों से बना होता है ना, ऐसे ही जो हमारा जो ये बॉडी है वो सेल्स से, कोशिकाओं से बनी है। कोशिका एक तरह की पूरी यूनिट है, और उससे हमारी बॉडी बनी, उससे अंग बनते हैं, फिर अंग से हमारा बॉडी बनती है पूरी। 8 अंग हमारे शरीर में होते हैं और उनसे ही इसी का निर्माण होता है। और हर कोशिका में एक सेकंड में 1,00,000 रिएक्शंस होती हैं। कितनी रिएक्शंस होती हैं एक कोशिका में? एक सेकंड में कितनी रिएक्शन हुई? 1,00,000 रिएक्शंस होती हैं। एक सेकंड कितना होता है? एक सेकंड हो गया ना, इतनी देर में कितनी रिएक्शन हो गई? 1,00,000 रिएक्शंस हो गई। और एक सेल में उसको 80,000 बिलियन से गुना करो, कितनी रिएक्शन हो गई बॉडी में एक सेकंड में? और जितने टॉक्सिन्स बनते हैं, आप किचन में काम करते हैं, खाना किचन गंदी गंदी हो जाती है, खाना बनाने के बाद गंदी होती है, साफ हो जाती है, गंदी हो जाती है ना, ऐसे ही जब हमारी सेल्स में रिएक्शन होती है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं, बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, बहुत सारे पॉइजन्स बनते हैं, उनकी सफाई भी एक सेकंड में हो जाती है। आप जानते हैं मैं एक सेकंड क्यों बोल रहा हूं, एक सेकंड से भी कम समय में एक्चुअली हो जाती है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, उसमें से एक धड़कन में कितना समय लगता है? 60 डिवाइडेड बाय 70 इज इट, तो 0.85 सेकंड लगते हैं सिर्फ, मतलब एक सेकंड से भी कम समय लगता है। उस 0.85 सेकंड में, 1 सेकंड से कम समय में, जो भी सेल्स में टॉक्सिन बनते हैं वो वॉश हो जाते हैं। किंतु जब आप जल्दी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात फील कर लेते हैं, आपकी नेचर सेंसिटिव हो गई, इमोशनल हो गई है, आप अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, टेंशन को अंदर ही दबा करके रखते हैं, तो आपके अंदर वो रिएक्शंस की संख्या 1,00,000 की बजाय 1,25,00,000 हो जाती है, 1,50,000 हो जाती है, स्पेशली गुस्से के अंदर। और कई लोगों के नेचर ऐसी होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, हर बात को सप्रेस कर लेते हैं, उनके अंदर भी ऐसे बहुत सारे, कई लोगों के अंदर ऐसा नेचर होती है जो हॉस्टाइल होते हैं, अंदर रिवेंजफुल बिहेवियर उनके अंदर होता है, दूसरों से बदला लेने की भावना, बाहर बोलते नहीं है तो अंदर अंदर सोचते रहते कि मुझे मौका मिले तो इसको मैं दिखाऊं, इससे बदला लूं, उसको बददुआएं देते रहते हैं, उनको माफ नहीं कर पाते, अंदर रिजेंटमेंट रहती है। तो वो इतने सारे हमारे ऐसे केमिकल बन जाते हैं और इतनी रिएक्शन की संख्या बढ़ जाती है, और रिएक्शन हर समय चलती रहती है। ये बहुत ही पॉइजनस बिहेवियर है, इसलिए कहा जाता फॉरगिव एंड फॉरगेट। नहीं, अगर आप किसी को माफ नहीं कर, किसी ने कुछ भी किया हो आपके साथ, कितना भी बुरा किया हो, अगर आप उसको माफ नहीं कर सकते हैं तो क्या होता है, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और खाली जागते हुए नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, सोते हुए भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्टडीज हुई हैं, रिसर्च हुई हैं, जब आप एक बार गुस्सा करते हैं तो आपकी बॉडी में 3 दिन तक ऐसे मैकेनिज्म चालू हो जाते हैं, एक के बाद एक जैसे झरना गिरता ना पानी का ऊपर से नीचे तक, तो कैसे एक एक चट्टान पे गिरता है, फिर दूसरे चट्टान पे, फिर तीसरे चट्टान पे, चौथे चट्टान पे, उसका वेग बढ़ता जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ती जाती है पानी गिरने की। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में एक के बाद एक रिएक्शन होती है ऐसी। एक बार गुस्सा करने से 3 दिन तक आपका ना तो आप दिमाग से ठीक सोच सकते हैं, ना आपका हार्ट ठीक से खून पंप करता है, ना आपका किडनी खून सफाई करती है प्रॉपरली, ना आपका खाना ठीक से पचता है। और गुस्सा सभी करते हैं, नहीं करते मतलब कम से कम एक बार गुस्सा करने के बाद 3 दिन तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना, नहीं ऐसा, ये डबल डोज करनी चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपने एक गोली खा ली, फिर दूसरी भी खा ली थोड़ी देर में, तीसरी भी खा ली, तो फिर क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बहुत लो नहीं हो जाएगा? नहीं। तो अगर आप एक बार उदास होते हैं तो लगभग 5 दिनों तक ऐसे केमिकल आपकी बॉडी से ऐसे बनते रहते हैं जिससे आपको 5 दिन तक नुकसान होता रहता है। 5 दिन तक आप फोकस नहीं हो सकते दोबारा से, आप उतनी एकाग्रता के साथ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको आदत हो गई उसी में रहने की, इसलिए हम फील नहीं कर पाते हैं। कि तो जो आदमी गुस्सा नहीं करता है, जो आदमी कभी उदास नहीं होता, अगर वो उदास होता है तो उसके ऊपर असर दिखाई देता है। कि तो जो आदमी इसमें यूज्ड टू हो गए हैं इसी में रहने के, गुस्से के हमेशा इफेक्ट में रहने के, उदास होने के सदा फीलिंग में न? और हॉस्टाइल बिहेवियर, जब तक आप उस व्यक्ति को माफ नहीं कर देते हैं, आपकी बॉडी में वो केमिकल्स निकलते ही रहते हैं दिन और रात। तो ये जो साइकोसोमेटिक डिजीज है, हर बीमारी साइकोसोमेटिक है, इवन एक्सीडेंट्स भी साइकोसोमेटिक है। आपका मन कहीं है, आप गाड़ी कहीं चला रहे हैं, इवन जितने एडिक्शंस हैं, अल्कोहल लेते हैं लोग, क्यों पीते हैं अल्कोहल, शराब क्यों पीते हैं, सिगरेट क्यों पीते हैं, ड्रग्स क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं लोग, क्यों लेते हैं बताएं, मन को रिलैक्स करने के लिए ना। आप चाय पीते हैं बहुत सारी ना, कॉफी पीते हैं, वो भी तो एडिक्शन है ना, वो एडिक्शन नहीं क्या, एडिक्शन नहीं है वो भी एडिक्शन है ना। कैसे आज की युग में जबकि बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और मन में जो नेगेटिविटीज हैं, मन में जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो भी तेजी से बढ़ रहा है, फास्ट लाइफ हो गई है, डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं, हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं अपने जीवन से, दूसरों के जीवन से। और एज ए डॉक्टर, जब मुझे इस डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन में मैं आया था, MBBS किया, फिर MD जब मैं ऑल इंडिया छोटे मेडिकल साइंसेज से कर रहा था, उसमें पहली बार मैं ब्रह्मा कुमारीज के कनेक्शन में आया। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हम लोग पेशेंट्स का इलाज तो करते हैं, किंतु लोग ठीक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो कर देते हैं, किंतु बीमारी तो ठीक होती नहीं है, फिर दोबारा तकलीफ हो जाती है। तो उन्हीं दिनों जब मैंने ये जो ब्रह्मा कुमारी से कनेक्शन में हम आने से और वहां से योग मेडिटेशन करना शुरू किया, तो उससे मुझे समझ में आया कि कैसे हमारे मन को अंदर जो अपने मेरे मन में भी जो बातें थी वो ठीक होने लगी। और फिर जब मैंने इसका MD मेडिसिन करने के बाद और फिर कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने के बाद, जब स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में कार्य कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि हम लोगों की एंजियोप्लास्टी करते हैं, बाईपास होते हैं हॉस्पिटल में, और कुछ समय के बाद ही आर्टरीज उनकी दोबारा से ब्लॉक हो जाती है। कई लोग बेचारे जो गरीब मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, और इवन अपर क्लास के लिए भी कई बार 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए निकालना, अचानक अपने उससे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो लोग अपने घर से, कई बार ऐसे जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग अपना घर बेच के भी एंजियोप्लास्टी कराते थे, और उसकी होने के बाद भी 3-4 महीने में उनको दोबारा तकलीफ होती थी और फिर दोबारा से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती थी, और फिर हमें उनको कहना पड़ता दोबारा से एंजियोप्लास्टी कराओ या दोबारा से बाईपास कराओ। तो तब ऐसा मन में, और वो कहते थे हमने अपना घर बेच दिया पहले एंजियोप्लास्टी में, पत्नी के पास गहने भी नहीं है, अब हम क्या करें, अब हम क्या बेचें। तो जब इस तरह की बातें मैं सुनता था मुझे बहुत अंदर से पेन होती थी कि हम डॉक्टर होके भी क्या सिर्फ पैसे वालों का इलाज कर सकते हैं, आम आदमी को जीने का हक नहीं है। तब इस तरह की मेरे अंदर से, क्योंकि मेडिटेशन में करता था, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास था रोज सुबह सुबह 4 बजे उठ के करने का, मुरली सुनने का, तो उस समय फिर मेरे अंदर इस तरह की बातें उत्पन्न हुई और तब ये नया एक कॉन्सेप्ट टच हुआ जिसको हम कहते हैं 3-डाइमेंशनल हेल्थ केयर या सोल माइंड बॉडी मेडिसिन। इनिशियली ये प्रोग्राम, ये रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया गया डीआरडीओ के साथ मिलकर के, दिल्ली में ही जब मैं था एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में, तो वहीं पर ये बैठ के प्रोजेक्ट बनाया गया। तब इस प्रोजेक्ट को करने की बात जब आई कि कहां करेंगे, डॉक्टर कलाम उस समय डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल थे, तो उनसे सारी बात डिस्कस होने के बाद प्रोग्राम बनाया गया। दिल्ली, बॉम्बे और अहमदाबाद के 3 बड़े हॉस्पिटल्स का कोलैबोरेशन किया गया और इसको करने के लिए फिर मेरे को, क्योंकि मैं काफी बार मेरा आना जाना होता था ब्रह्मा कुमारीज में, माउंट आबू में, तो फिर मैंने माउंट आबू शिफ्ट किया क्योंकि ये जगह सबसे अच्छी जगह है जहां पर आदमी आकर के शांति, प्यार, खुशी की अनुभूति कर सकता है। और तब ये प्रोग्राम शुरू हुआ और फरवरी 98 में शुरू हुआ, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पास होने के बाद फिर यहां पर सारे इंडिया से पेशेंट्स आने लगे, एंजियोग्राफी करा के आने लगे। और उसके बाद जैसे जैसे पेशेंट आते थे और कैसे कैसे उनकी बीमारियां ठीक होने लगी, उनके ब्लॉकेजेस खुलने लगे, तो मैं आपका इसका शुरू में तो सिर्फ हार्ट के लिए शुरू किया गया था प्रोग्राम, किंतु हार्ट के पेशेंट्स को साथ साथ डायबिटीज भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, माइग्रेन भी होता है, साथ वालों को भी स्पेशली, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमेशा हम दोनों को बुलाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं, स्पाउस के साथ बुलाते हैं, वाइफ बीमार है तो हस्बैंड को साथ में जरूर बुलाएंगे और वाइफ हस्बैंड बीमार है तो वाइफ को जरूर बुलाएंगे, एंजियोग्राफी करने के बाद ही बुलाते हैं। और फिर ये स्टडी हमारी, मतलब जो रिसर्च हमने की माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल के नाम से की, आबू हेल्दी हार्ट ट्रायल के नाम से की, और वो पब्लिश हुई और वर्ल्ड में आज उसका, फिर इसकी जब रिसर्च होती ना, 2011 में पब्लिश की थी और 2013 में फिर हमें बताया गया मिनेसोटा से कि आपकी रिसर्च, जो ये रिसर्च जो पब्लिश की है आपने, पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा लोगों ने इसको विजिट किया है, सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी रिसर्च में इसको साइट किया है और ये जो है वर्ल्ड की टॉप 20 स्टडीज में फर्स्ट रैंक पे है। तो बाबा के घर में वो आके रिसर्च हुई और लोगों को एक ब्रह्मा कुमारीज का नाम, जैसे ब्रह्मा कुमारीज में हुआ कि हाँ वहां बिना ऑपरेशन के हार्ट की बीमारी ठीक होती है, तो हार्ट की बीमारी तो ठीक होती है, साथ साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाता है, मोटापा भी कंट्रोल, एसिडिटी भी कंट्रोल, एक्जिमा भी कंट्रोल में आ जाएगा, एस्थमा भी ठीक हो जाएगा। वो मैं कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा अभी थोड़ी देर, कुछ मिनटों में, कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। खाली वो हार्ट की बीमारी के लिए नहीं है, मन और तन की हर बीमारी उससे ठीक हो जाती है। तो जो आज की जो हेल्थ केयर है वो 1-डाइमेंशनल है, सिर्फ बॉडी की, बॉडी एक डायमेंशन है इंसान की, उसकी सिर्फ केयर करती है, और इंसान एक्चुअली 3-डाइमेंशनल है। पहली डायमेंशन इंसान की, सबसे पहली डायमेंशन क्या है, मैं कौन हूं, कौन है हम, आत्मा है ना, आत्मा है, और फिर दूसरा क्या है, एक शरीर है। आत्मा और शरीर के बीच में कनेक्शन किसका है, दोनों का। अगर मुझे आपको कोई चीज देनी है तो मैं कैसे दूंगा आपको, अगर ये पेन मुझे आपको देना है तो मैं कैसे दूंगा आपको, मुझे पेन आपको देना है, कैसे देंगे आपको, हाथ से देंगे ना, और आप कैसे लेंगे, हाथ से लेंगे। तो मन आत्मा का ही एक फैकल्टी है, आत्मा की एक शक्ति है, किंतु आत्मा को जो कुछ भी मन को देना, बॉडी को देना होता है, किसके माध्यम से देती है, मन के माध्यम से देती है। आत्मा ही शरीर को चला रही है, आत्मा यहां है और आत्मा सारे शरीर को चलाती है। आत्मा निकल जाए तो क्या होता है, शरीर डेड हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू रहती है क्या, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो आत्मा शरीर को चला रही है, कैसे चला रही है, आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है और उस आत्मा से 7 एनर्जी हमेशा निकलती रहती हैं। आत्मा की इननेट एनर्जीज हैं, अंदर की एनर्जी, से पानी की, क्या पानी के अंदर क्या क्वालिटी है, नेचुरल क्वालिटी क्या है पानी की, ठंडक, सूरज की नेचुरल क्वालिटी क्या है? क्या है नेचुरल क्वालिटी? गर्मी और प्रकाश, राइट। ऐसे ही आत्मा, जैसे सूरज है ना, उसकी दो एनर्जी है, और ऐसे आत्मा के अंदर सात एनर्जी है। तब जब आत्मा इन सात एनर्जी से भरपूर है, तो ये सात शब्द से सतो प्रधान शब्द आया। सतो, सतो प्रधान, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर। तो आत्मा जब सात गुणों से भरपूर है, सात एनर्जी से, तो सतो प्रधान कहते हैं। रजो माना शाम, जब आधी एनर्जी हो जाती है तो उसे रजो कहते हैं, शाम हो गई। धूप में फुल एनर्जी है ना, शाम को आधी हो गई ना, जैसे सूरज की रोशनी की बात कर रहा हूं, और रात में अंधेरा हो गया, और तमो माना अंधेरा। तो जब आत्मा सत्युग में आई थी, उसको सत्युग शरीर मिला था देवी देवता का, तो सतो प्रधान थे हम, कोई बीमारी नहीं थी, न मन की न तन की। फिर रजो प्रधान जब द्वापर युग शुरू हुआ, तो आत्मा की एनर्जी कम हो गई थी, तो वो एनर्जी कम होने से बीमारियां थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई थी, सिर्फ कुछ लोगों को होती थी। फिर अब तमो प्रधान, कलयुग कांत, तमो प्रधान, टोटल सातों एनर्जी ना के बराबर है। तो कौन कौन सी सात एनर्जी है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये सात एनर्जी। इंग्लिश में इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, केपी स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर, केपी स्क्वायर LHBP, के फॉर नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान सार रूप में क्या है? ABCD, सार रूप में, विस्तार तो बहुत बड़ा है, सार रूप में ABCD, ABCD का ए फॉर आत्मा, मैं अति सूक्ष्म, ये ज्ञान, ये समझ हमको आ गई कि मैं देह नहीं, मैं कौन हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। बी फॉर बाबा, अर्थात हम सब आत्माओं का पिता कौन है? परमपिता परमात्मा शिव है, राइट। सी फॉर कनेक्शन, मेरा सारा संबंध उसके साथ है, और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, परमात्मा इसका डायरेक्टर है, और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। कोई मुझे दुख दे रहा है, वो क्यों दुख, दुख, दुख मुझे क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि पिछले जन्म में मैंने इसको दुख दिया हुआ है, इसलिए वो मेरा संबंधी बनके, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, बच्चा बनके मुझे दुख दे रहा है। अगर सुख दिया हुआ है तो क्या होगा? इन्हीं संबंधों के थ्रू मुझे सुख दे रहा है, राइट। तो परमात्मा इसका डायरेक्टर, वो एक्यूरेट डायरेक्शन देते हैं, इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है वो कैसा हुआ है? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? क्या हुआ है? अच्छा हुआ कि बुरा? अच्छा हुआ है। और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अभी हमें समझ आ गई है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो जब इतना हम इस ABCD को, इस ज्ञान से हमारा मन बुद्धि प्योर होता है, पवित्र होता है, और जितनी पवित्रता आती है उससे शांति आती है। शांति में ना हमारे विचार पॉजिटिव हो जाते हैं और कम हो जाते हैं, और शांति से फिर प्रेम पैदा होता है, सच्चा प्यार। प्यार माना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? लव माना अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर। कोई कैसा भी है, कुछ भी करता है, किंतु मेरी उसको हमेशा से, जैसे परमात्मा हमें क्या करता है? अनकंडीशनल केयर करता है ना। एक माँ अपने बच्चे की केयर कैसे करती है? कंडीशनल या अनकंडीशनल? एक बच्चे को अपनी माँ हमेशा याद क्यों रहती है? बाप क्यों नहीं याद रहता है? 60 साल का होने के बाद उसको अपनी माँ जरूर याद रहती है, बाप याद नहीं रहता है। दुख होता है, तकलीफ होती है, उसको कौन याद आता है? क्यों याद आती है? क्योंकि माँ ने उसको बचपन में अनकंडीशनल, वो कैसा भी था, कहना मानता था नहीं मानता था, उसकी केयर कर, उसकी केयर दी हुई है। और डिग्निफाइड, कितना भी शैतान बच्चा हो उसकी, तो भी माँ क्या बोलती है उसको? मेरा राजा, मेरा राजा बच्चा है ना, मेरा चांद है ना, मेरा सूरज है। तो वो जो फीलिंग, वो हमें, वो अनकंडीशनल डिग्निफाइड के, उसे प्यार कहते हैं। ये जो प्यार की फीलिंग है, इससे फिर हमें खुशी पैदा होती है, उसको हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, सुपर सेंस ऑफ हैप्पीनेस, उसकी एक्सट्रीम को आनंद कहते हैं। और उससे वो शक्तियां पैदा, उस आनंद को, उस सुख को अचीव करने के बाद मुझे प्राकृतिक शक्ति आती है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये ठीक है, ये गलत है। तो निर्णय करने की शक्ति आती है, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति आती है, समेटने की शक्ति आती है, उसके लिए सब कुछ सहन करने की शक्ति आ जाती है, सामना समाना सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। तो आत्मा के साथ गुण साथ एनर्जी से बॉडी की हर कोशिका नरिश होती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है इस प्रोग्राम के, इसको भी हम थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर कहते हैं ना इसको, हम सोल माइंड बॉडी, आत्मा मन और बुद्धि बॉडी तन। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ठीक करना है अपने आप को, तो आपको कौन ठीक करेगा? डॉक्टर ठीक करेगा आपको? भगवान भी आपको ठीक नहीं कर सकता है, ये आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने आप को स्वयं ठीक करें। हेल्दी शब्द दो शब्दों से बना, हील प्लस डाई, हील प्लस डाई मीन्स हील योर सेल्फ, अर्थात सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो आपको हील कर सकता है, वो कौन है? कौन है? डॉक्टर है? भगवान है? आपके माता पिता है? आपका पति या आपकी पत्नी है? बच्चे है? नहीं, स्वयं आप हैं। आप ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, आप ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आपको बीमार किसने किया? आपने स्वयं ने बीमार किया, आपकी स्वयं की सोच ने आपको बीमार किया, जो देखते हो उसने बीमार किया, जो सुनते हो उसने बीमार किया, जो बोलते हो उसने बीमार किया, और जो खाते हो उसने बीमार किया। और ठीक कौन करेगा? आप ही खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है और भगवान आपको मदद कर सकता है, अगर आप उसकी श्रीमत पे चलें तो। आप एक कदम चलेंगे, वो आपको हजार कदम आपकी मदद करेगा, तो आप चलेंगे नहीं तो कैसे कैसे मदद करेगा? कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये जो है पहली बात है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हील दाई सेल्फ। मैं समझता हूं अगर आप ये बात समझ गए तो आने का मतलब मेरा पर्पस सिद्ध हो जाता है, हील दाई सेल्फ। जब और फिर दूसरी बात है सेल्फ अवेयरनेस, जब मुझे खुद को खुद ठीक करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे खुद को जानना बहुत आवश्यक है। जो हिंदी शब्द है हेल्दी का शब्द है स्वस्थ, स्वस्थ शब्द भी दो शब्दों से बना है, स्व मीन्स इनर सेल्फ, ये आत्मा सोल, एंड स्था मीन्स कॉन्शियस। तो स्वस्थ का मतलब भी क्या है? इनर सेल्फ कॉन्शियस या सोल कॉन्शियस। क्योंकि मैंने बताया बीमारी का मतलब क्या है? डर बने रहना। डर किस बात का? बीमारी का, बुढ़ापे का, मृत्यु का, तीन डर तो कॉमन है सबसे, सबके सबके अंदर काम तीन डर है ना। तो आत्मा के अंदर जब अपने को आत्मा समझेंगे तो क्या होगा? फिर डर कहां जाएगा? आत्मा मरती है क्या? बीमार होती है क्या? बूढ़ी होती है क्या? तो जब अपने को आत्मा समझ के हर कार्य करते हैं आप, उठते बैठते चलते फिरते, तो आपके अंदर से डर निकल जाता है। तो स्वस्थ का मतलब ही सोल कॉन्शियस है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सदा सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा, राइट? और फिर ये जो आपने सुना हो ना शब्द इनक्यूरेबल, जैसे कहते हैं हार्ट की बीमारी इनक्यूरेबल है, कैंसर इनक्यूरेबल है, भले आप ऑपरेशन करा लीजिए फिर भी कैंसर आपकी बॉडी में है, हार्ट का ऑपरेशन करा लीजिए उसके बाद भी आपकी हार्ट, आप हार्ट पेशेंट ही है ना, फिर भी दोबारा कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज है, आप कितनी मर्जी गोली खाते रहे डायबिटीज ठीक थोड़ी ना होगी, आपको डायबिटीज बनी रहेगी ना, तब भी आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, भले तीन टाइम इंजेक्शन लगते हैं आपको तो भी आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, 20 साल से लग रहे हैं तो भी आप डायबिटीज के पेशेंट हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां इनक्यूरेबल है ना। इनक्यूरेबल का मतलब जिसने ये वर्ड कॉइन किया था उसका मतलब ये नहीं था इट इज नॉट क्यूरेबल, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था कि इट इज इन प्लस क्यूरेबल, दैट मीन्स इट इज क्यूरेबल इफ यू गो इन, अगर आप अंदर जाओ तो ये क्यूरेबल है, चाहे वो हार्ट की बीमारी है, चाहे वो कैंसर है, चाहे कोई भी बीमारी है, चाहे इवन लास्ट स्टेज में भी अगर आप कैंसर हो गया है तो भी आप अंदर जाके उसको ठीक कर सकते हो। आपकी तीनों आर्टरीज बंद हो गई हैं और बहुत डिफ्यूज ब्लॉक हो गया है, डॉक्टर कहते हैं आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती है, कि तू आप अपने अंदर जाओ और जाके देखो मैं कौन हूं और उसमें स्थित हो जाओ मैं कौन हूं, तो आपके ब्लॉकेज खुलने शुरू हो जाते हैं, आपका कैंसर ठीक होना शुरू हो जाता है। ऐसे कितने ही हमारे पास एग्जांपल्स हैं, लिविंग एग्जांपल्स हैं। कैंसर जिनको 15 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, उनको क्या कहा, आप दो महीने में मर जाएंगे, मैक्सिमम आप 2 महीने जिएंगे, क्योंकि आपका कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में है, बहुत सब जगह फैल चुका है। जब उन्होंने इस बात को रियलाइज किया मैं कौन हूं, वो सोल कॉन्शियस हो गए और उसका दिल से अभ्यास किया और सबको माफ कर दिया, सबको फॉरगिव कर दिया, स्वयं को भी माफ कर दिया, दूसरों को भी माफ कर दिया और अपने इसमें टिक गए सोल कॉन्शियसनेस में, तो उनका वो कैंसर भी खत्म हो गया। ऐसे ऐसे पेशेंट्स जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर, जिसे कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, हार्ट की पंपिंग पावर 20% हो गई, 15% हो गई, नॉर्मली 10-15% या 20% होने के बाद पेशेंट मुश्किल से 2 साल जी पाता है, वो पेशेंट्स भी सोल कॉन्शियस होने से ठीक हो गए, उनकी पंपिंग पावर वापस 50-60% हो गई। नॉर्मल हार्ट की पंपिंग 50-60% होती है, मतलब हार्ट रिवाइव हो गया, नया हार्ट बन गया। ऐसे कितनी ही सारी बीमारियां, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सोल कॉन्शियसनेस। आयुर्वेद तो बड़ा क्लियरली बोलता है स्वस्थ मीन सोल कॉन्शियस, अंदर वाला मैं, बाहर वाला मैं नहीं, स्व मीन्स अंदर वाला मैं, उसमें स्थित हो जाओ। और फिर है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, अगर मुझे स्वयं को स्वयं ठीक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। कैसे कैसे शक्तिशाली बनेंगे, शक्तिशाली हमेशा ट्रुथ से बनते हैं, सत्य से बनते हैं। और सत्य कौन है, सत्य कहां से आता है, यूनिवर्सल ट्रुथ कौन है, गॉड इज ट्रुथ। तो जो गॉड हमें नॉलेज देता है, परमात्मा जो हमें नॉलेज देता है, वो हमें किस तरह से तीन 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 उसमें देता है, पहले इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग। पहले में सूचना देता है, फिर पढ़ाता है, एजुकेशन देता है, और फिर अकेले में समझाता है। कैसे पढ़ाता है हमको, पहले हमको सूचना देता है कि बच्चे तुम ये हो, जैसे तुम्हें अभी अभी आपको यहां के पता लगा कि आप ये देह नहीं आत्मा है, डॉक्टर हैं आप, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, ये आपका रोल है सोसाइटी में, आप मां हैं, बाप हैं, ये किसी की पत्नी है, किसी के पति हैं, ये आपका रोल है सोसाइटी में, लेबल है। अब वो है नहीं, आप एक आत्मा है, वो आत्मा ये रोल प्ले कर रही है शरीर के द्वारा, राइट। उसमें इनसिक्योरिटी है, उस रोल में बॉडी अपने को दे समझता है, इनसिक्योरिटी डर है, रोल में भी इनसिक्योरिटी है, किंतु मैं आत्मा हूं तो इनसिक्योरिटी नहीं है, राइट। तो ये जब आप अपने आप को, तो इसमें पहले इंफॉर्मेशन मिली, तो परमात्मा क्या करता है, पहले अपने बारे बताता है, मैं कौन हूं, मैं कब आता हूं, कैसे आता हूं, मैं क्या करता हूं, फिर आत्मा के बारे बताता है, फिर मन के बारे बताता है, फिर बॉडी के बारे बताता है। तो ये सोल माइंड बॉडी मेडिसिन, इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी सी देर में बता देता हूं। हमारे अंदर एक घड़ी लगी है, हाइपोथैलेमस में घड़ी लगी है, उसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं उसको। वो जैविक घड़ी, उसमें टाइम है, उसमें सोने का टाइम है, उठने का टाइम है, उसमें मेडिटेशन करने का टाइम है, उसमें वॉकिंग करने का टाइम है, उसमें नाश्ता करने का समय है, उसमें लंच करने का समय है, उसमें डिनर करने का समय है, उसमें ऑफिस या घर में काम करने का समय भी। अगर उस समय आप काम करते हैं, उसमें वो चीज को करते हैं, तो वो कम एनर्जी में वो काम अच्छा होता है, और वो काम उस समय ना छोड़ के आप उससे अलग काम करते हैं तो वो ज्यादा एनर्जी में थोड़ा काम होता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दें, जैसे आपको कई बार कहते हैं ना हम लोग, आप तो माताएं हैं और सभी घरों को देखते हैं, जैसे टमाटर मिलते हैं ना, टमाटर टमाटोज सीजन में कितना सस्ता मिलता है, 5 रुपए किलो मिलेगा, 7-8 रुपए किलो मिलेगा, और बिना सीजन के 50 रुपए किलो मिलेगा। किंतु जब 5 रुपए किलो मिलता है तो उसमें उसकी सॉस बना के आप रख दी, सारा साल चलती है, और 50 रुपए किलो का टमाटर रह गया, सॉस बनाएंगे खराब हो जाएगी। तो इसी तरह से जैसे आपको 10 बजे सोने का समय, अभी 10 बजने वाले हैं, 10 बजे हमारे अंदर जो क्लॉक कहती है 10 बजे सो जाओ, क्योंकि 10 बजे अगर आप पर सोने से पहले अपने आप को ऑडिट करो, ऑडिट माना सारा दिन में देखो मैंने आज क्या सारा दिन में क्या किया, क्या गलत किया, क्या ठीक किया, जो आपके अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं उसके अनुसार, और जो नए बिलीफ सिस्टम आपको इस ज्ञान से मिल रहे हैं, समझ मिल रही है, उसके अनुसार देखो मैंने क्या ठीक किया, क्या गलत किया, क्या गलत सोचा, क्या गलत देखा, क्या गलत बोला, क्या गलत खाया, क्या गलत सुना, क्या गलत कर्म किए, वो लिखो। जैसे चर्च में भी कन्फेस करते हैं ना, तो सोने के पहले अपनी कोई भी ऐसे विचार भावनाएं वो व्यक्त कर दो, आज की विचार और आज की भावनाएं आज ही व्यक्त करो, नीचे साइन करो और वो गॉड को सरेंडर कर दो, परमात्मा को सरेंडर कर दो। तो जब ऐसे सरेंडर करके जब आप उसके बाद थोड़ी देर मेडिटेशन करके सो जाओ, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा ABCD को रिवाइज करके सो जाओ, तो क्या होगा, आपको पहले 2 घंटे में, एक नींद की साइकिल 2 घंटे की होती है 10 से 12, उसमें आपको 110 मिनट गहरी नींद आती है, 10 मिनट से सपने वाली नींद आती है, अगर ऑडिट करके सोते हो तो, और 12 से 2 में 30 मिनट सपने की नींद आती है, 90 मिनट गहरी नींद आती है, और 2 से 4 में 50 मिनट सपने वाली नींद आती है, 70 मिनट गहरी नींद आती है, और 4 बजे तक के जो सपने होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स होते हैं, वो लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स आपको सुबह याद नहीं रहते, मतलब अच्छे सपने होते हैं और वो आपको याद नहीं रहते। अगर आप 4 से 6 सोते हो तो 4 से 6 में 90 मिनट सपने वाली नींद आएगी, और डरावने सपने आते हैं, टेरर ड्रीम्स आपको याद भी, आपको अनुभव भी होगा, अगर आप 4 बजे उठ के दोबारा सो जाते हो तो क्या होता है, सोते ही सपने शुरू हो जाते हैं, और कैसे सपने आते हैं, खराब सपने, गंदे सपने आएंगे, विकारों के सपने आएंगे, क्रोध के सपने आएंगे, कहीं आग लग गई, कोई मर गया, एक्सीडेंट हो गया, और वो याद रहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स होते हैं, याद रहते हैं। और सुबह 4 बजे आपकी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, 3 ग्लैंड है ना यहाँ पर, जहां आत्मा का निवास स्थान है, इसी के बीच में ही आत्मा का निवास स्थान है, यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, तो वो जो ग्लैंड से वो हार्मोन, टेंशन वाले हार्मोन ज्यादा निकल आएंगे, और ये हार्मोन अर्ली मॉर्निंग में निकलते हैं पहली बार, तो आप उसमें क्या कर रहे हो उसके अनुसार ये हार्मोन निकलते हैं। अगर ये हार्मोन सुबह गलत निकल गए तो सारा दिन आपको जो भी आपको बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, घुटने खराब है, कमर दर्द है, सिर दर्द है, और ज्यादा बीमारी बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं बात। अगर आपने 4 से 6 के बीच में, 4 से 5 के बीच में आधा घंटा आनंद की स्थिति में आ गए तो क्या होगा, ये साइंस की बातें बता रहा हूं मैं आपको, तो आपके जो 18 हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल से वो हार्मनी में निकल आएंगे, और अगले 24 घंटे में आपकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, थायराइड, माइग्रेन, पेट की खराबी, जो भी बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां कम होंगी। इसलिए कहा जाता अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इसलिए कहा जाता, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता 4 बजे के समय को। तो 4 बजे इसलिए हमको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, और उठ के मुंह हाथ धो के ब्रश करके हमें आधा घंटा मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन करने का तरीका भी सिर्फ ABCD को रिवाइज और रियलाइज करना चाहिए, बार बार अनुभव करना चाहिए, उसको फील करें कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, और ये संसार रूपी नाटक क्या है, उससे अपने आप मन और बुद्धि शुद्ध होती जाती है, मन और बुद्धि शुद्ध होते होते शांति, विचारों की कमी होती जाती है, सबके प्रति प्यार पैदा होता जाता है, फिर उससे खुशी पैदा होती है, उससे आनंद पैदा होता है, तो आत्मा परमात्मा के मिल में ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, और उससे आपके हार्मोन निकल आते हैं। तो ये सबके लिए मस्ट है, ऑप्शनल नहीं है, राइट। इसलिए कहा जाता है इस समय जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, सातों एनर्जी आपकी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है, वो सातों गुण आपके अंदर भर जाते हैं। और सातों गुण भरने से, और वो अगर आप आठवें तक चुप रहें, साइलेंस में रहें, क्योंकि जो भी विचार आप करते हैं उठने के बाद, आधे घंटे के बाद उन विचारों का असर आपकी एड्रिनल ग्लैंड पे होने लगता है। यहां किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स होती है एड्रिनल ग्लैंड्स, उनसे कार्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है, वो स्ट्रेस हार्मोन है। और वो हार्मोन जो कुछ भी आप सोचेंगे, जो भी मन में भावना आएगी, उसके अनुसार वो हार्मोन निकलेगा। तो अगर आप अपने आठ बजे तक चुप रहें और सिर्फ 100% पॉजिटिव विचार ही करें, पॉजिटिव बातों को याद करें, पॉजिटिव भावनाएं अपने अंदर पैदा करें, जीवन के प्रति या दूसरों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव वृत्ति रखें, तो आपके 8 बजे तक जो हार्मोन निकलेगा कॉर्टिसोल हार्मोन, वो आपका बैलेंस में निकलेगा और आपके मन में सारा दिन शांति प्यार खुशी से काम होता रहेगा। अगर आपने 8 बजे तक से पहले कोई भी बात नेगेटिव सोच ली, भले बोला नहीं, नेगेटिव भावना मन में आ गई, किसी नेगेटिव बात को याद कर लिया या नेगेटिव किसको बोल दिया, गुस्सा कर लिया, तो वो हार्मोन इतना ज्यादा निकल जाएगा, आपको बिना गुस्सा किए सारा दिन गुस्सा आता रहेगा, सारा दिन जल्दी चिंता अपने आप, डर लगता रहेगा अपने आप, जो आज होता है नहीं होता है। इसलिए सुबह 8 बजे तक ना तो आपको अखबार पढ़ना चाहिए, ना टेलीविजन देखना चाहिए, ना आपको मोबाइल ज्यादा यूज करना चाहिए। बहुत इमरजेंसी है तो यूज करो, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो ये आपको नियम पक्का करना चाहिए, ठीक है, ये हमारी घड़ी कहती है। तो सुबह चार से साढ़े पौने पांच बजे तक आपने योग किया, उसके बाद नहा धो के तैयार हो जाओ, वॉकिंग कर लो 45 मिनट, अपना घर का काम कर लो, फिर 7 से 8 हम क्या करते हैं, ये जो परमात्म महावाक्य है जो कल आपको बताएंगे, मुरली कहते हैं उसको हम, वो 100% पॉजिटिव ट्रूथ है ना, 100% पॉजिटिव टीम है, उसमें थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरीज पॉजिटिव है। और वो जब हम उसको अध्ययन करते हैं, उसको मनन करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उससे हमारी टीम पॉजिटिव रहती है। और 8 बजे के बाद फिर हम लोगों से बातचीत में आते हैं, फिर अपना नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो ये जो है हमारी दिनचर्या अगर रहती है 8 बजे तक, तो हमारे सारी एनर्जी सारी बॉडी की हर सेल में पहुंच जाती है, शांति प्यार खुशी की एनर्जी, और फिर ये एनर्जी बॉडी के आसपास हमारे आसपास ऑरा बन जाए, आभा मंडल बन जाए, शांति प्यार खुशी हमारे रोम रोम से निकल के हमारे आसपास इकट्ठी हो जाए, जिसको आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। उसके लिए शुद्ध सात्विक भोजन खाएं। शुद्ध सात्विक भोजन का अर्थ क्या है? भोजन परमात्मा की याद में बनाएं और सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, शाकाहारी भोजन में फल, सब्जी, रोटी, दाल, दूध, अंकुरित दलिया, ये खाना खाएं। रासिक भोजन कौन सा होता है? वो आपके अंदर आलस्य पैदा करता है। सात्विक भोजन शांति प्यार खुशी पैदा करता है, रासिक भोजन आपके अंदर आलस्य पैदा करता है। जैसे कि पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां जो हम खाते ना, ये रासिक भोजन है, आपको आलसी बनाएगा, अलबेलापन पैदा करेगा, केयरलेस बना देगा, नींद आती रहेगी, सुस्ती आएगी। और तामसिक भोजन जो होता है वो आपके अंदर उत्तेजना पैदा करता है, चिंता गुस्सा पैदा करेगा, चिड़चिड़ापन पैदा करेगा। वो कौन सा भोजन है? नॉन वेजिटेरियन, लहसुन प्याज, चाय पीना बहुत सारी, कॉफी बहुत पीना, अचार खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये जो है तामसिक भोजन में आता है, जो आपके अंदर उत्तेजना पैदा करता है। तो ये आपको ध्यान रखने का है, ठीक है। तो शुद्ध सात्विक भोजन और 45 मिनट सैर, नाश्ते के पहले सैर सूर्य उदय के साथ, और फिर सोने के पहले अपने आप को ऑडिट कर लें, तो आप देखेंगे आपके आसपास धीरे धीरे वो आभा मंडल इकट्ठा होता जाएगा, शांति प्यार खुशी का। और उससे क्या होगा, आप जहां भी जाएंगे, अपने घर में रहेंगे या कहीं भी बाहर भी जाएंगे, तो वो एनर्जी आपके आसपास इकट्ठी होती रहेगी, आपके घर का वायुमंडल शांत हो जाएगा, कोई आपके साथ गुस्सा भी करना चाहेगा तो आपके नजदीक आके गुस्सा नहीं कर पाएगा, वो भी शांत हो जाएगा, आपके घर में शांति हो जाएगी, आपके ऑफिस में शांति प्यार खुशी का वातावरण बन जाएगा। तो जितना इसको अभ्यास करेंगे उतना आपके अंदर पैदा होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे कहते हैं सोल माइंड बॉडी मेडिसिन, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर, स्पिरिचुअल केयर सुबह सुबह, मेंटल केयर 8 बजे तक, और फिजिकल केयर फिर थ्रू आउट द डे। और ये बार बार रिवाइज करें, मन में इसको जितना इस मुरली को परमृत वेला, फिर मुरली और सोने के पहले ऑडिट करना, और शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक सैर और सोने के पहले ऑडिट करके सो जाना। और बीच में कोई दवाई है तो शरीर की वो दवाई भी लें, किंतु अगर तीनों चीजों का प्रैक्टिस ऐसे करेंगे तो एक नई जीवन शैली, हेल्दी लाइफस्टाइल आपके लिए होगा, जिसमें आप खुश भी रहेंगे और आपका जीवन भी, कुछ भी बीमारी आपको है, कैसे भी जीन्स माता पिता से मिले हैं तो भी वो बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, दवाइयां कम हो जाएंगी और आप सदा स्वस्थ और सदा खुश रह सकेंगे। ओम शांति।
दिल में